पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
ये तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हो और इस काल ने आपके साथ बहुत भयंकर धोखा किया हुआ है। आपको भ्रमित करके अज्ञान अंधेरे में रोका हुआ है। मैं तुम्हें ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च देने आया हूँ, इसकी रोशनी में तुम अपने घर आ जाओगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं भी आए हैं, फिर अपने एविडेंस बनाए हैं, अपने गवाह तैयार किए हैं, ताकि इस बिचली पीढ़ी के समय में ये प्यारी आत्माएं अपने परमात्मा को पहचान सकें, अपने पिता को पहचान सकें। जैसा कि परमात्मा हमें बताते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण शेरण धीरम। अब हमने यहाँ के उद्देश्य बना रखा है, क्या टारगेट बना रखा है, जन्म होते ही जब बच्चा समझने जोगा हो जाता है तो आसपास घर में या रिश्तेदारी में या अपने को मित्र प्यारों की सोसाइटी में एक बात की गूटी पिलाई जाती है, भाई उसने इतना कोठी बना ली, उसने कार खरीद ली, उसने ऐसे 20 एकड़ जमीन बना ली। तो हम केवल वो माया जोड़ने की दौड़ में लग जाते हैं और एक होड़ बन जाती है। और काल का ये सबसे आसान दाव है कि ये जीव अपना जीवन बर्बाद कर दे जब इसको मानुष जीवन मिले, और ये ऐसे ही डड़े ढोने में लगा रहे। अब इसको पता है काल को कि ये मान लीजिए कोठी बना लेता है या कहीं से 2 नंबर 3 नंबर का काम करके माया जोड़ लेता है, धन इकट्ठा कर लेता है, पता उसको कहाँ ले जाएगा, यहीं छोड़ जाएगा, अपना जीवन बर्बाद करेगा। ये सबको मालूम है, जिसके पास अरब और खरबों की संपत्ति है वो भी 2 रोटी खाता है, अर्थात 2 समय खाना खाता है, कोई 4 रोटी खा ले, कोई 6 खा लेगा, कोई 2, सिर्फ इतने से ज़्यादा नहीं। और वो परमात्मा अवश्य व्यवस्था करता है क्योंकि उसके भाग्य में है। उसके अतिरिक्त हम जो भी समय व्यर्थ करते हैं संपत्ति संग्रह करने में, संतान के लिए व्यवस्था बनाने, विशेष व्यवस्था, संतान की व्यवस्था बनाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया, लेकिन हम परमात्मा को भूलकर केवल मकान महल बनाने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। उसका उदाहरण दिया कितना साधारण सा, कि आप कितना सोना इकट्ठा कर सकते हो, 10 ग्राम 20 ग्राम कोई मरपड़ का 50 ग्राम कोई 100 ग्राम यानी 10 तोड़े, और कुछ ज़्यादा सेठ होगा तो एक मान ले 1 किलोग्राम कर लेगा, तो बहुत बड़ा सेठ समझता अपने आप को। नहीं, कबीरा सब जग निर्धना वो धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। सर्व सोने की लंका होती रावण शेरण धीरम। इसने क्या नाम, रावण ने तो सोने की लंका बना रखी थी, अपने महल बना रखे थे सोने की ईंटों के, और कहते एक पलक में राज विराजी, मृत्यु होगी युद्ध में और राज रहित हो गया राज विराजी। और फिर क्या हुआ कि जम के काल के पड़े जंजीरम, किधर गदा बनेगा किधर खच्चर बनेगा, वह सोने की लंका लूट ली दुनिया ने, वो उसके पास रहा नहीं। और 1 लख पूत 1.25 लख नाती, आज किसी का 4 लड़के हों और 4 नौकरी लाग जाए तो काख पीटता अंडा है, हो पता नहीं क्या हो गया। और कहते और फिर नंबर आ जाए उनकी मृत्यु का, टक्कर मार मार कर होता है, भाव ये नहीं है परमेश्वर के कहने का कि संतान ना हो या मकान आदि ना बनावे। इन सबको समझा करके परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम नाम न मत छोड़े भाई, परमात्मा की भक्ति मत भूले, बाकी तो जो अपने व्यवस्था निर्वाह के लिए जो तूने करना है वो करता रहे। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जिसके संतान नहीं है वो कहे भगवान एक संतान हो जाए, बस दूसरी चीज नहीं मांगता, मुक्ति नवी बाढ़ में जाओ उसके लिए उसने एक संतान पुत्र चाहिए, पुत्री है वो बिनो का पुत्र मिल जाए। तो ये क्या किसका दोष है, ये काल ने जाल फला रखे। मान लीजिए हमारा कोई भक्त बहन बेटी भाई इस ज्ञान से दृढ़ होना चाहता है, वह ठीक है भगवान ने जो दे रखा है वो हमारे हित में ही है, ना देते वो भी हमारे हित में है, ये तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट और परमात्मा का सही नियम है कि जो मालिक दे उस वो हमारे हित में है, ये तो हमने पल्ला गांठ लगा लेनी चाहिए। फिर भी जैसे हमारे भक्त तो मान जाते हैं लेकिन पड़ोसी अड़ोसी घर में बुढ़िया सासू ससुरा वो ज्ञान से अपरिचित हैं, वो कुछ ना कुछ इंजेक्शन लाते रहते हैं उस बच्चे के, एक जातक तो चाहिए था बता तेरा वंश के ऊपर चलेगा। अब वो बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं, फिर नाम ने परमात्मा चाहते हैं कि मैं इसको मुक्त करूं, इसका पीछा छुटवा दूं, इसलिए डिले कर देते हैं कि इसको संतान ना दूं, इसका फांसी गल जाएगी, लेकिन नहीं रुका जाता। फिर कि तो झाड़े लुआन चले जाए, कि तो छोरे उनकी दवाई लेने चले जाएंगे, वो परमात्मा का नाम तो कट जाता और वहाँ मिलना कुछ को नहीं, ऐसे ब्रान माटी और करवा लेते हैं। तो ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप इस ज्ञान के आधार पर संघर्ष करके अपना पीछा छुटवा सकते हो। इसलिए परमात्मा ये बताना चाहते हो, मान लीजिए तेरा एक संतान हो भी जाएगी तो तेरा वंश चल जाएगा ना, तो उस कृष्ण का वंश की तरह ढूंढ पा रहा ना, उन रामचंद्र का वंश की इच्छा ना, उन पांडुवा का वंश की तरह ढूंढ लो पा जाता तुमने, और रावण का वंश बता दो जिसके 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,000 रिश्तेदार, 101 बलि थे। कहते हैं उस रावण काज दीवान बाती, उसका वंश तो दूर रहा, उसके उन महिलाओं में कोई दीवा दीपक लगाने वाला भी नहीं रहा। इसलिए परमात्मा इस सारे ज्ञान को समझा कर हमें क्या बताना चाहते हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा यसरे। अब एक और जाल काल का, अब जैसे किसी का संतान नहीं होती कोई बेटी बहन के हैं, और वो फिर बस इससे तड़फ में मर जाए, भगवान एक संतान ना हुई मेरे बालक हो जाते, न हो जाता, फिर वो मर जाती है। मरते समय भी वो औरों की संतान को देखती है उस समय वृद्धा होकर के, और फिर भी न कहे भगवान मेरे भी आज बच्चे होते थे, मेरे बेटे चौगरदे खड़े चारों तरफ खड़े होते हैं। वो मरने के बाद उसने सूरी बना देता है, ये काल उसको सूअर की जूनी देता है, सूअर की योनि में वह सूरी बनकर के एक ही बार में 18 बच्चों को जन्म देती है। अब काल खड़ा खड़ा हंसता अगले ले ले कितने बच्चे चाहिए, इतने 18 एक बार पैदा करती है। ऐसी दुर्गति ये काल हमारी कर रहा है, इसको कोई रहम नहीं, लेकिन हमारे पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी रोते रहते हैं हमारे इस दुख को देख, क्योंकि हम सभी चाहे आज कोई हाथी बना है, चीटी बना है, कोई रंक बना है, राजा बना है, किसी भी मजहब धर्म में मानव बना है, ये सब आत्मा एक ही परम पिता की है, और जिसके बेटा बेटी हो और उनको कोई कष्ट हो उसी निज माता पिता को ही कष्ट होता है, अन्य रिश्तेदार तो अस्थाई कुछ समय के लिए ही आते हैं और थोड़ा सा दुख व्यक्त करके अपना अपना रास्ता नाप जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी को जो हमें दुख हमारा दुख है इस कष्टों का, इसलिए वो परमात्मा इसे गंदे लोक में आते हैं, जो ऊपर सतलोक के तुलना में इधर झांकने को दिल भी नहीं करता, ये इतना गंदा लोक है जैसे कोई मार्बल के मकान के में रहता हो और फिर उसको किसी कीचड़ में जाना पड़ जाए कोई चीज उठाने के लिए, जैसे किसी का सोना गिर जाए और गंदे गंदे नाले में गिर जाए तो उस गंदे नाले में वो गिर पहुंच जाता है अपने कपड़े कुपड़े टांग के, और उस सोने को निकाल कर ही आता, उसके हाथ भी खराब हो जाते। ऐसे ये आप सोना हो उस परम पिता के, और आपको निकालने के लिए वो प्रभु इस गंदे नाले में, इस काल के लोक में आता है। और हम फिर भी परवाह नहीं करते, हमें उठा करके किनारे पर रखता है, दूसरे को उठाने जाता है, इतने वापस फिर उसी में गिरफ मिलते हैं। हम ऐसे बच्चे हैं, अबोध बालक हैं। तो हम समझदार बनेंगे इस तत्व ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान को समझ कर हम फिर इस गंदे नाले में फिर नहीं गिरेंगे। इसलिए आपको तत्व ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। जैसा कि इन अज्ञानी संतों ने, ऋषि महर्षि जो कथित महर्षियों ने अपनी अज्ञान थ्योरी के आधार पर, अपने अज्ञान सिद्धांत के आधार पर परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा है, जबकि हमारे सदग्रंथ परमात्मा को साकार बताते हैं। और वो मनुष्य जैसा है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। कल आपको प्रमाणित करके दिया दिखाया था कि पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल ने, दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिल के सद सिद्ध कर दिया कि मनुष्य परमात्मा मानव सदृश है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है, और उसका नाम कबीर है। और उसी परमात्मा ने पूर्व सर्व सृष्टि 6 दिन में रची और 7वें दिन विश्राम किया। और इन्हीं पवित्र धर्मों के, मुसलमान धर्म के और ईसाई धर्म के व्यक्ति परमात्मा को निराकार कहते हैं। अब आपको और उदाहरण देते हैं जो कि परमात्मा साकार है। जैसे पवित्र सिख धर्म के अंदर परमात्मा को निराकार कहते हैं, और वो कहते हैं गुरु नानक देव जी ने कहा है तू ही एक निरंकार, निरंकार निर्भय निर्भव, ये पूरा एक मंत्र सा है, अकाल मूर्त अकाल पुरुष। तो वो जो है उन्होंने, वो नानक साहेब जी ने जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक वो जैसा भी लोकवेद सुना हुआ था हिंदू समाज में, वो परमात्मा को निराकार कहा करते थे। और जब उनको परमात्मा प्राप्ति हुई तब उन्होंने परमात्मा को निराकार नहीं कहा, तब उन्होंने क्या कहा, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करता। परमात्मा कबीर जी को सतलोक में देखा, फिर वही मूर्त वही सूरत बनारस के अंदर एक धानक का काम करते हुए, जुलाहे का काम करते हुए देखा, तब आंखों में आंसू भर के उस परम, उस प्यारी आत्मा नानक साहब ने कहा था कि धानक रूप रहा करता, लोगों ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा ये परमात्मा है। फिर उन्हें उसको निराकार नहीं कहा, सतपुरुष अकाल मूर्त कहा, वाहे गुरु कबीर जी के विषय में ही कहा। अब आपको श्री नानक देव जी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे परमात्मा की शरण में आए, और उन्होंने प्रभु को कैसे प्राप्त किया। नानक साहिब जी, नानक साहिब वाली आत्मा सतयुग में राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत ही प्रभु प्रेमी और बहुत ही धर्मी पुरुष था। वह विष्णु जी के उपासक थे और सच्चे दिल से प्रभु भक्ति में लगे हुए थे। जैसा भी उनको किसी गुरु ने रास्ता बताया था, वो उसी आधार पर अपनी साधना किया करते थे। एक दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने देखा कि अम्बरीश जी एकादशी को उन्होंने आहार नहीं किया हुआ था, एकादशी को आहार नहीं किया था, उसको अम्बरीश जी को किसी ने ऐसे ही गुरुदेव ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करो, यानी संयम के हिसाब से, जैसे क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तो भगवान के विषय में जो भी साधना बता दी जाती है वो तन मन धन से करता, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आने देता। अब उनके गुरुदेव ने, अम्बरीश जी के गुरुदेव ने बता रखा था कि बेटा परमात्मा के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं है, राजपाट ये जीवन कुछ समय का होता है, यदि आप भक्ति नहीं करोगे राज के सुख को ही भोगते रहोगे, अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इस बात से वह दृढ़ विश्वास हो गया था कि भगवान की भक्ति के बिना जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने बताया था कि आहार कम करें और भक्ति तभी ज़्यादा हो अच्छी होगी, ज़्यादा खाने से तो फिर आलस बन जाता है, और बिल्कुल ना खाएगा तो भी शरीर को हानि हो जाएगी। तो अम्बरीश जी ने ऐसा तरीका बनाया जैसे एक जैसे एकम को मान लीजिए 10 रोटी खाता था, तो अगले 10 रोटी खाता था तो अगले दिन द्वितीया को वो एक कम कर देता था, ऐसे करते करते एकादशी को वो कुछ नहीं खाता था, केवल जल लेता था। ऐसे वो उसी दिन, वो एकादशी का दिन था और दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने से उन्होंने कहा कि आओ रिसीवर भोजन पालो। दुर्वासा ऋषि कहने लगा पहले मैं स्नान करके आता हूँ गंगा में दरिया में, उसके बाद मैं आहार करूँगा। अब उसने क्या किया हुआ था कि जैसे उस दिन द्वादशी व एकादशी शाम को आफ्टरनून दोपहर के बाद 1 बजे समाप्त हो रही थी, तो उस दिन उसका जो उसने समापन करना था, उस दिन का आहार करना था दुर्वासा ने ना अम्बरीश जी ने, तो उसने उधर दुर्वासा जी लेट हो गए नान नून में पूरा किता अपना भजन भुजन करने लगे। इतने उसने सोचा कि 1 से ऊपर समय होने वाला है और कल से एकम शुरू हो जाएगी, इसलिए अब वो जो आज का जो आहार में कर लेता, उस दिन केवल जलपान किया उसने और भूख लाग रही थी कसूती, एक के बाद फिर उन्हें रोटी खा ली, 1 बजे के बाद भोजन पा लिया अपना जो खाना था। तो दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी से कहा कि परमात्मा साधु संत जी भोजन पाओ। दुर्वासा कहने लगे आओ आप भी भोजन पाओ। अब अम्बरीश कहने लगा जी मैंने तो भोजन कर लिया। अब वो कहने लगा कि तूने मेरा अपमान कर दिया, संत से पहले एक गृहस्थी ने भोजन कैसे खा लिया, ये ऐसी बकवाद करते हैं ये नादान संत ऋषि महर्षि, गृहस्थी को तो हेय समझते हैं और अपने आप को ये बड़े महान समझते हैं, क्योंकि अज्ञान की गिठड़ी बांध रखी इन्होंने। अरे भक्ति जो करता है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे कोई घर त्याग रहा है, वैरागी सन्यासी है, यदि साधना ठीक है, उसके नियम ठीक है, दोनों ही परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी को भी लाभ नहीं। अब दुर्वासा जी कोपित हो गए, नाराज हो गए, और उसको लगे समझाने के, तूने तो उसने बताया जी आज ऐसे समस्या थी कि मैं एकादशी को कुछ नहीं आहार करता, मैंने एकादशी समाप्त होने वाली थी, मैंने जलपान कर लिया। तब दुर्वासा कहने लगा कि तू गलत साधना कर रहा है, मैं तुझे निराकार भगवान की विधि बताता हूँ, ये तो तू सरगुण साधना करता है, निर्गुण साधना करनी चाहिए, ये करा कर ऐसे करा कर। अब अम्बरीश जी ने सोचा साधु नाराज हो जाएगा, यू गुस्से वाला ज़्यादा है, यदि मैंने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया तो यू तुरंत श्राप दे देगा। कहने लगा ठीक है महात्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही कर हो जाएगा। अब वो दुर्वासा उस दिन तो चला गया, अब एक अगली एकादशी को फिर आ गया, एकादशी सुदी एकादशी, उसने उस दिन भी यही उसी समय पहुंचा और अम्बरीश ने उसी तरह फिर उस दिन भी आहार कर लिया और स्नान करके आया। इतने तो उसने दुर्वासा ने सोचा था आज तो ये ठीक हो गया होगा, तेरी बात पर इसने अमल किया होगा, जो मार्गदर्शन मैंने किया इसने स्वीकार कर लिया होगा। कहा आओ अम्बरीश खाना खा लो। अम्बरीश ने कहा भगवान भगवान मैं भोजन कर चुका हूँ, मैंने अपना जो करना था कर लिया। ने बोला मेरे से पहले कैसे कर लिया? फिर वही क्रिया बताई। कहने लगा मैंने तेरे को मना किया था ये साधना छोड़ दे तू, मैं जो बताता हूँ वैसे कर वैसे कर। खूब नाराज हो गया और इतना क्रोधित हो गया कि अपने हाथ से सुदर्शन चक्र, अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र, ये क्या होता है? जिसके पास भक्ति करने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, जो अन्य डले डो करके साधना करते हैं, उन सिद्धियों से ये कोई भी हथियार ऐसे मांगेंगे काल उनको तुरंत पकड़ा देगा, अकेले अपने कर्म बिगाड़ फटाफट। तो उसने जो ही ऐसे किया कि सुदर्शन चक्र, तो जुब काल ने सुदर्शन चक्र दे दिया और सुदर्शन चक्र को कहा कि अम्बरीश की गर्दन काट दे। पहले तो ये बात देखो कहाँ का साधु अम्बरीश पशु, अरे माड़ी ही बात पर इतना गुस्सा कि एक भगत की गर्दन काटने को तैयार हो गया। ठीक है तेरे विचारों को ये मानने ना मानने कोई तेरे से दबाव में थोड़ा ही है, आपका फर्ज है समझाने और कहने का। नहीं मानता कोई बात नहीं, उससे क्या फिर उसकी जान ही ले ले। इसे तो ये ऋषि महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे, जो कति किसी खाते के भी ना थे, और अमीन को बड़े महर्षि बड़े इनके आदर से नाम लिया करते थे, इनकी कथा सुनाया करते थे। अब इनकी कथा आपके सामने दास सुना रहा, ये किसे ऋषि थे और क्या इनको प्राप्ति हुई। अब क्या हुआ, अब वो सुदर्शन चक्र वहां दुर्वासा के हाथ से चला और अम्बरीश के चरण छू लिए, गर्दन नहीं काटी, राजा अम्बरीश के उस गृहस्थी के चरण छुए और वापस चल पड़ा। अब दुर्वासा की तरफ चल पड़ा कि तुझे खत्म करूंगा। अब दुर्वासा कहता अंडी पाक रहा था, गुस्सा था, कहते दुर्वासा के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, इतना क्रोधीर सिद्धि बात। अब वो उसकी वजह जो है ना सिट्टी फिट्टी गुम होगी, अब ये सुदर्शन तुझे मारेगा, भाग लिया आकाश में उड़ गया सिद्धि ते। वो सुदर्शन चक्र फिर भी साथ साथ चल रहा है। पहले वो भगवान शंकर के पास गया, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई निकल जा जल्दी, मन मरवाओगा कि यहाँ पर क्या क्या पंगा पा दिया तेने, जा तू यहाँ से और कितने भाग। फिर शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने देखा कि तो भाई पड़वा माल छेड़ रखा है इसने, तो कहने लगा भाई भाग जाए यहाँ से, ऋषि जी मेरे पास मत आना, मरवाओगा मुझे भी। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी हाथ खड़े कर लिए महात्मा जी कि तो और देख ठिकाना। तब वो विष्णु जी के पास गया, क्योंकि विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जावा था कि वो अम्बरीश विष्णु का उपासक था, उसके भगत को तने तंग कर दिया, वहां जाऊं किस लिए। तब इंद्र ने कहा कि विष्णु जी के पास जा, तेरा पीछा छूट सकता है। अब विष्णु जी, अब ये लीला है प्रभु की। पुण्यात्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को आप विशेष ध्यान रखना, इस तत्व ज्ञान रूपी अमृत ज्ञान को समझने के लिए। उसमें लिखा है कि छर पुरुष और अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में छर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो परमात्मा हैं, दो भगवान हैं, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं और जीवात्मा तो सबकी अविनाशी होती ही है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, छर पुरुष ये ब्रह्म है काल और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो सात संख ब्रह्मांड का मालिक है। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम अर्थात वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक प्रभु तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, अन्य ही है, और जो भगवान कहलाता है उसको भगवान कहा जाता है। और ये लोक तर्यम अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो वो जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक प्रथम में पढ़ा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवे, ये ऊपर को जड़ वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी समझो ये संसार है, जड़ जो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखाएं, तो जड़ से सबको आहार प्राप्त होता है, सर्वशक्ति प्राप्त होती है। अब ये सारा खेल कबीर परमेश्वर कर रहे थे, दुर्वासा जी का जो अभिमान था वो कहते हैं ना शेर ने सवा शेर भाई टक्कर जाया करे, तो दुर्वासा अपने इक्विवेलेंट किसे ने नहीं मान रहा था। और फिर गृहस्थी को तो ये जो अनजान ऋषि मह ऋषि तो थोड़े से सन्यासी बन जा, घर छोड़ जाए, लाल कपड़े पर दाढ़ी वो डाली और किधर छोटी मोटी कोई जंतर मंत्र की पुड़िया इनका हाथ लाग जाए, कोई सिद्धि मिल जावे, फिर तो ये धरती तोल देते हैं। तो अम्बरीश के की भक्ति के सामने वो सिद्ध पुरुष अब दौड़ा जा रहा है, आगे परमात्मा ने उसके साथ क्या किया। वैसे विष्णु जी जो श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण कहो विष्णु कहो एक ही है, तो दुर्वासा जी के शिष्य हुए थे श्री कृष्ण जी बाद में, जब श्री कृष्ण रूप में आए थे विष्णु, तो वहां क्या किया कि विष्णु जी का दरबार लगा हुआ, 88,000 ऋषि वहां पर विद्यमान, 33 करोड़ देवता वहां पर बैठे, और दुर्वासा जी को जब सबसे ज्यादा तोप मानते थे वो, और दुर्वासा जी का आया पसीना देखा दौड़ा आ रहा है आकाश से, और वहां दरबार के सामने नीचे उतरा और फिर भाग गया, और बीचों बीच डाक ठोक रहा है, वो पीछे देखकर फिर आगे भाग रहा है। तब सभी ये देख कर उसकी दुर्दशा, वो 88,000 ऋषि बहुत खिलखिला कर हंसे, अकाश तो बचो साहब डांक ठोक रहा, क्या बात होगी इसको, उन्होंने देखा पीछे मिराड बलतान लग रहा पूरा उत्तरा, ये तो सुदर्शन चक्र पूरा उग्र रूप धारण किए, इसको मारने के लिए चला आ रहा है। तो वहां बताते हैं कि जब श्री विष्णु जी का आसन सिंहासन के पास जाकर हाथ जोड़ता, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो वहां वो सुदर्शन चक्र 50-60 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है और ऐसे ही उग्र रूप धारण किए हुए है कि ये एक बार इस भगवान की धरना और इसने संवारू। अब दुर्वासा जी कहते जो टट्टी पेशाब दोनों गुम और कति बुरा हाल हो रहा उसका, उसने कहा भगवान मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने पूछा कि ऋषि जी क्या गलती कर दी तूने, आज ये सुदर्शन चक्कर इतना क्यों तेरे को जो है त्रास देना चाहता है, सच्ची साच बता क्या कहानी है जल्दी जल्दी। अब वो लग गया सारी कहानी बताने, कहने लगा भगवान ऐसे ऐसे मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और वो साधना करता था, उस साधना से मैंने उनको मना किया था कि तू ये साधना छोड़ दे और मैं जो तुझे साधना बताता हूं वो साधना कर। पहली बार मैं गया तब तो उसने हां भर ली, मैं दूसरी बार गया उसने फिर भी वही वो साधना करता हुआ मिला, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको सुदर्शन चक्र से उसको मारना चाहा। ये भगवान पता नहीं ये क्या कारण हुआ, ये मेरा ही सुदर्शन चक्र और मेरे को ऊपर ही जो है ना आक्रमण कर दिया, इसने मुझे ही मारना चाहा, मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे भाग लिया, मैं डर के भागा आ रहा हूं और मैं वहां भी गया वहां भी गया, सब ने हाथ जोड़ दिए कि हमारे बस का नहीं तू, वापस जा, विष्णु जी के पास जा, तो भगवान मैं आपके पास आया हूं, वो आपका भक्त है, आप ही उसको शांत कर सकते हैं। अब परमात्मा बोले भाई एक काम कर, वापस जा और अम्बरीश से ही अक्षमा याचना कर। अब और फंस गया, अब मरेगा तू, जब भगवान ही नहीं बचा सकता तो अम्बरीश कैसे बचा देगा, आज मर गया। अगर नहीं भगवान आप मेरी रक्षा करो, आप रक्षा करो परमात्मा, वहां मैं कैसे बचूंगा जब आपकी शरण से ही नहीं बच सकता। भगवान बोले भाई वही पीछा छूटेगा, अगर वो तुझे खुश होकर आशीर्वाद देगा तेरी जान बचेगी, ना तो बच्चा नहीं बचे। पुण्यात्मा ये सारी लीला कबीर परमेश्वर की थी। परमेश्वर कबीर जी ने विष्णु रूप धारण किया और अपने ही वो लोक से जैसे काशी में भंडारा किया था, वहाँ 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रखकर आ गए थे और 9 ही लाख वहाँ पर उनके साथ बैलों के साथ जो है अन्य बंजारे भी साथ थे। ऐसे ही परमात्मा ने वहाँ ये सब लीला करके उसको सीधा करना था, अपनी भक्ति को यथार्थ भक्ति को बनाए रखना था। और अम्बरीश राजा जो आत्मा है कई जन्मों से प्रभु की शरण में रही हुई थी, इसीलिए उसको अच्छे स्थिति में वो रहा। अब ये सारा ज्ञान तत्व ज्ञान से अभी आपको सुलझा, क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा हमारा जो मन की सुई अज्ञानता के कारण विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उस पर टिकी हुई थी, अब उसको वहाँ से आगे चलाना है यथार्थ स्थान पर, इस अपने दिमाग की माइंड की सुई को सेट करना है, उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है जो आपको अब प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखना अमृतवाणी, परमात्मा जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक नाना प्रकार की साधना साधकों के द्वारा की जाने वाली साधना लिखी है, और साथ में ये भी कहा है वो लोग इसको वो साधक इसको पाप नाशक जानते हैं, लेकिन सातवें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस परम पिता परमात्मा के अमृतवाणी में बहुत प्रकार के परमात्मा के पाने के विधि लिखी है, और उसमें ये भी लिखा है जैसा ये और साधन करते हैं और उनको निर्णायक तरीके से वो ठीक हैं या गलत उस सवसम वेद में बताएगा। तो वो सवसम वेद आपको सुना रहा हूं। दुर्वासा काली सिला ये बज्र बली त्यों लोके, अम्बरीश दरबार में तिन भी खाया दोखे। कहते हैं दुर्वासा काली सिला, इसका आगे कोई टेकने वाला नहीं था, और वज्र बली त्यों लोक, तीनों लोकों के अंदर ऐसा माना जाता था जैसे वज्र यानी एक बहुत भयंकर शस्त्र के आदमी था कि ये बहुत खतरनाक है। चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीश को घाले, तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल। चक्र सुदर्शन शीश पर अम्बरीश को घाले, राजा अम्बरीश के सिर को काटने के लिए दुर्वासा ने वो अम्बरीश सुदर्शन चक्र भेज दिया। तीन लोक भागे फेरे ऐसी अवगत चाल, कल्प किसी ना कीजिए जो दुर्वा जो चाहे सो होए, दुर्वासा को छोपन को कहीं न पाई खोए। स्वर्ग मृत्यु पाताल में चक्र सुदर्शन डीक, दुर्वासा के चक्र से जरे नहीं अम्बरीशे। चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू, चक्र अपुटा फिर गया चरण कमल को छू, भक्त विशंबर नाथ की देखी दूबर दू, कोट बज्र को फूक दे वो चक्र सुदर्शन चूर, भगत वछल भगवान से रहा पैड़ दस दूर। दुर्वासा के दैन को तीन जग में भेट, 56 कोटि यादो गए देख हेठ दर हेठ। साग पत्र ते छिक गए देख भक्ति की रीत, जरे मर नहीं तास से सतगुर शब्द अतीत। अम्बरीश असला असल भक्ति मुक्ति का रूप, निस्वासर पद में रह जहां छाया ना धूप। राजा के योगी गए, राजा के योगी गए दुर्वासा ऋषि देव, चक्र चलाया गोर कर नहीं ली रसी सेव। दुर्वासा के शीश को चला चक्र अचाने, त्रिलोकी में तास गम कहीं न देऊं जान। श्वेतलोक विष्णुपुरी, श्वेतलोक विष्णुपुरी ही दुर्वासा चल जाए, तहां विश्वंभर नाथ को किन्नी देख सहाय। कृष्ण गुरु कसनी हुई ही और बचेगा कौन, 3 लोक भागे फेरे वो भर में 14 भौन। भक्ति दरो ना कीजिए भक्ति दरो मम दोष, शिव ब्रह्मा नारद मुनि जिन्हें जरा ठोक। भक्ति दरो रावण किया हरणा को शरण अक्ष, नारायण नरसिंह भये मम भगता है साचे। मम भगता मम रूप है, मम भगता मम प्राण, पंडो सताए कौर वहां दुर्योधन छयो मान। मम भगता मम प्राण है, मम भगता मम देह, हिरणा कुश के उदर को पाड़त नहीं संदेह। मम भगता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम, राजा प्रजा रीति सब ये नहीं जाने राम। मम द्रोही से ना बचूं, मम भक्ता मम के कारण रचे सकल भंडार, बाल्मीक ब्रह्मलोक में शंख कला उद्गार। मम द्रोही से ना बचूं, छल बल हनु प्राण, 52 हो बलि कह गए रहा दो का मान। मम द्रोही मम साल है, मेरे जन का दूत, कोट जगन का गोट कोट युगन का टूटी से करूं जंगल का भूत। मम द्रोही मम साले है, मारो रज रज बीन, भवन सकल और लोक सब करो प्राण तीन। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारम्बार, जूनी 85 तास को हूं जब लग श्रेष्ठ संगार। गर्भ जूनी में त्रास दो जब लग धरणी आकाश, मारो तुस तुस बीन करे नहीं मिटे गर्भवास। प्राण निकंदों तास के 86 सृष्टि संयोग, संत 57 कल्प जुग ता सिर दीर्घ रोग। मुनात्माओं एक कथा से ना जाने कितना निर्णय आपको मिलेगा। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा के जो वचन है वो एक भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो व्यर्थ हो। इस कथा से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जिससे हम बुराइयों से बचेंगे, क्योंकि हमें डर होगा। जब तक बच्चा अबोध होता है, बालक होता है, उसको जानकारी नहीं होती, वो सर्प की पूंछ भी पकड़ लेता है, सर्प को की मुंडी पकड़ लेता है उसको खिलौना समझकर, और सर्प उसको डंक मार के ख़त्म कर देता है। बच्चा जैसे कोई बिजली के तार ज़मीन पर गिर गए हों और वो आपस में हवा के हिलने से ऐसे स्पार्क कर रहे हों नंगा तार, बच्चा उसे आतिशबाजी समझकर और उसके पास जाकर के उसको पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि तू जिस क्रिया को जिस वस्तु को छू रहा है ये तेरे प्राण घातक है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है फिर वो डरने लग जाता है, वो फिर उन वस्तुओं को उस जानवरों से डरता है, उनको छूता नहीं, भाग लेता है, वो दूर भाग जाता है। इसी प्रकार अभी हम परमात्मा के संविधान से अपरिचित हैं, उस अबोध बच्चे की तरह हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं और उन प्राण घातक वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें ना जाने कितने जन्मों तक वो भोग करके पूरे करने होते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ऐसे जुल्म हम नहीं करेंगे, हम भाग लेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, अपना हाथ वापस कर लेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। अब यहाँ कबीर परमात्मा विष्णु रूप धारण करके और वहाँ उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण, पंडो सताए कौरवों दुर्योधन छवमान। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति में रहे हैं किसी जन्म में। जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपको आपका दुरुपयोग करेगा जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा, फिर नीचे पृथ्वी पर पटक देगा, वहाँ राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा भ्रमित करके रखता है जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है, और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार कि जो जन हमरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था, किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना ढड़े ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी, ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। अब क्या बताते हैं, कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहाँ परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज़्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की केस चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा, और वो भी बेशक भक्त है जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भगत को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भगत ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं, प्राण निकंदू तास के छसी सृष्टि संयोग, संत सतावन कल्प युग ताशर दीर्घ रोगे। कहते संत को दुखी करता है, जो संत को सताता है उसके ऊपर कई कल्प युगों तक हो, कल्प युग ताशर दीर्घ रोग, एक कल्प एक कल्प कितना होता है? जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष ना एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, 1008 चतुर्युग। कहते जो संत को सताता है, जो मेरे भक्तों को तंग करता है, उनको 1008 युग तक अर्थात एक कल्प तक, उसके ऊपर इतने भार हो जाए कि एक कल्प तक भी दुखों को भोगता रहेगा। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सब सुनो और सनकादिक चारे सेंस 88 जरेब में या मत मूड गंवार। ये 88,000 ऋषि भी, ये भी कहते मूड और गंवार हैं, ये टोड़ के टोड़ फिरने लगे, इनको ज्ञान नहीं है। चक्र चले दुर्वासा पर मैं बक्सो नहीं तो, ये हे मम द्रोही तू दूसरा चरण कमल ऋषि जोए। अब परमात्मा कहने लगे के तूने मेरे भक्त को तंग किया है और तू मेरा द्रोही हो गया। अब जाकर के ऋषि जी के, हे ऋषि जी जाकर के उस दुर्वासा के चरणों में शीश झुका दे, वो तुझे क्षमा करेगा। अब क्या कहता दुर्वासा, बोल लेता हाँ सुनो भक्ति के ई से स्वर्ग रसातर लोक सब तो पूर्ण जगदीश तुमरे दर छूटू नहीं। अब दुर्वासा रोए है, रोने लगा, कहता है तुमरे दर छूटे नहीं ये चक्र सुदर्शन चोटे कहाँ खंदाओ ईस जी मैं बचूं कौन की ओटे। यदि मैं तेरे दर पर भी अरे सुदर्शन चक्र मुझे नहीं बख्सेगा, सुदर्शन की चोट नहीं से नहीं बचूंगा, तो मुझे कहाँ भेज रहे हो, कहाँ खंदा रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास साहिब बोल रहे हैं कहाँ खंदा रहे हो। खंदाना माने भेजना, ये हमारे हरियाणा की एक विशेष लैंग्वेज है, विशेषकर रोहतक जिला, पुराने रोहतक जिले की और जींद का उरला हिस्सा जो है, इसमें वो कित खंदा दिया, वो कहाँ भेज दिया। तुमरे दर छूटो नहीं, तुमरे दर छूटे नहीं ये चक्र सुदर्शन चोटे कहाँ खंदाओ ईस जी ए भगवान जी कहाँ भेज रहे हो। बचूं कौन की ओटी, अब किसकी ओट किसकी शरण जाऊं जो मुझे सुदर्शन चक्र से बचा सके, और तो कोई है ही नहीं आपके अतिरिक्त। अब क्या बोलते हैं प्रभु, अम्बरीश दरबार में तुम जाओ निरसंधे काली घटा पूठी पड़े मम द्रोही मुख खे दुर्वासा मृत लोक को तुम जावो तत्काल ज्ञान ध्यान शास्त्र तजो शास्त्रार्थ तजो हो ये बाद बेदा जंजाल। दुर्वासा परमात्मा कहते हैं कि दुर्वासा तुम तुरंत उस मृत लोक में जा पृथ्वी पर और ये बकवाद छोड़ दे, ज्ञान ध्यान ये शास्त्रार्थ छोड़ के, और तुम ये वाद विवाद या आपस में वाद विवाद करते हो, ये तो भाई जंजाल है। जप तप करनी काल है बिना भक्ति बंधाने एक ही केवल निकाम है सो देवेंगे दान। अब भक्ति करने की विधि आप जी को इस वाणी के द्वारा अपने को समझा रहे हैं प्रभु अपने एक संवाद से। कहते हैं जप तप करनी काल है, जो भी तुम साधना कर रहे हो ये भी काल के जाल में रहने की है। चाहे कोई सत साधना जो हमारी साधना कर रहा है वो भी, क्यों कैसे बिन भक्ति बंधान है, है। बिना भक्ति बंधान माने बगैर मर्यादा के नियमों का पालन ना करते हुए जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंधान जब तब करनी काले है बिन भक्ति बंधान, एक ही केवल नाम है सो देवेंगे दान। एक वास्तविक मंत्र है जो परम संत आपको नाम दान करेगा। मान बड़ाई कुकेरी ये डिम डफान करंत, जिनके उर्म ना बसों जम छाती तोड़ंत। परमात्मा कहते हैं जो मान बड़ाई करते हैं, बकवाद करते हैं, फूले फूले हांडते हैं, अपने नंबर बनाते फिर हैं, कहते हैं उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसके तो यम किंग कर उसके बक्कल तारेंगे, उसकी छाती तोड़ेंगे, अर्थात उसको अच्छी पिटाई करेंगे, वो भक्ति से वंचित होगा। मान बड़ाई कुकरी जो डिम्ब डफान करते, डिम्ब डफान ढोंग करते हैं, उन जिनके उर्म ना बसों जम छाती तोड़ते, उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसको यम के दूत कूटेंगे। चाहे को दाढ़ी बढ़ा रहा है, चाहे को बकवाद कर रहा है, अड़ी संत बने फिरे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठे हैं, और उनके पास कह नहीं भक्ति का, कहते उनके पास मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, उनके पिछले पुण्य इतने चलेंगे तब तक वो जो के तो उनकी सारी क्रियाएं ठीक चलती रहेंगी, जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी एकदम सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन्वर्टर की वह बैटरी चार्ज पर नहीं लगी हुई। उनको यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं है, वो पहले जन्मों की भक्ति से अभी तक वो साधु संत बड़े अच्छे महात्मा नजर आ रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे उनके देखना दुर्गति दिखाऊंगा इसी जन्म में। मान बड़ाई कुकरी डिम डफान करंते, जिनके उर्म ना बसों जम थाती तोड़ंत। बंजारे के बैल जो फिर देश परदेश, जिनके संग न साथ हूं जगत दिखावे बेखे। पहले बंजारे होते थे, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन करते थे, पहले बैलों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी, और वो बिजनेस करते थे, व्यापार किया करते थे, कहीं से कोई सामान ले आए, बैलों के बोरों के ऊपर डाल कर दूसरी जगह बेचते थे। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे वो बंजारे के बैल कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ऐसे वो बंजारे के बैल जो फिरे देश विदेश, जो ये नकली संत इधर के उधर भागते फिरते हैं, कितने लालच लोभ में अपने स्वार्थवश ना जाने कित कित घूमे, और दुनिया में अपना बना के वेशभूषा साधु संतानी नकलियाली, जो आजकल जो समाज को पसंद है कि यू साधु है, जो दाढ़ी बढ़ा ली, ऊपर जो ना लटा रखा ली, बड़ी बड़ी लाल कपड़े पहन लिए, पांचन माला गाल ली, मथे में तिलक लगा लिया, या कति मुंड मुंडा के घोटम घोट होकर लाल कपड़े पहन कर लो, कति शीशा सा चमके सिरका है, और तिलक लगा ले, कोई टिक्का बिंदी ला ले, लाल कपड़े पहन ले, या कति नंगे पैरा घूमे। तो कहते इस तरह की बकवाद करके, ढोंग करके तुम इधर उधर भागते फिरते हैं, उनके संग ना साथ हो, वो जगत दिखावे बेहेक, वो दुनिया को रिझाते फिर रहे हैं, उनके पास वस्तु नहीं है। आजिज मेरे आश्रय में आजिज के पास, गैल गैल लाग्या फिरू जब लग धरती आकाश, दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुंडारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधारे। अब कहते हैं दुर्वासा फिर भगवान के कहने से चल पड़ा, भगवान बोला चुप करके जा, और वो तुझे माफ करेगा अम्बरीश तो तेरी अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं, तेरी जान बख्शी जाएगी। अब कहते हैं अम्बरी दुर्वासा अम्बरीक के गए ज्ञान गुण डारे, चरण कमल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधार। दुर्वासा जी अपने वो जो ज्ञान बकवाद बताओ था, ऐसे कर ऐसे कर, कहते हुआ वो पटक दिया ठाका, जान बचानी मुश्किल होगी, अपने ज्ञान को और अपने समर्थता को, उस गुण को मेरे अंदर सिद्धि शादी है ये दिखाना चाहता, वो भी पटक दी और जाके चरणों के अंदर लेट गया, मत्था टेक दिया राजा अम्बरीश के चरणों में। किसने? उस दुर्वासा ने जो आंडी पा करा था। अम्बरीश गृहस्थी के चरणों में दुर्वासा सन्यासी ने वह मत्था टेक दिया, अग मेरी जान बचा दो, मेरी जान बचा दो। बक्सो प्राण दया करो, अम्बरीश से कहते हैं दुर्वासा जी, बक्सो प्राण दया करो, पीठ लगाओ हाथे, और मेरे में ठंड होवे शीतल की जगात। चरणा में लौट कर बोला, मेरे कमर पर हाथ मार दे, एक वह मुझे अपना शिष्य बना ले, मेरे कमर पर हाथ मार दे पीठ पे, और मेरी जान बचा दे ताकि मेरी मुझे शांति मिले। अम्बरीश मैं के तहां भी हंसे बदन खुलास, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। कितनी अधीन अम्बरीश में, कहते हैं परमात्मा न्यू राज्य होगा भक्तों पर जब अपने आप को दास अधीन। चाहे आप हमारे अंदर कोई भी ऐसी शक्ति भी आ जाती है भक्ति से, और वो मान ले प्रगट भी हो जाती है, अंडी नहीं पाकना चाहिए, कति अधीन बना रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहे। तो वहाँ इतना, क्योंकि राजा अम्बरीश के जब वो दुर्वासा वापस आया और वहाँ देखनिया की भीड़ लागी, नगर निवासी सौर्य वहाँ सब खड़े, तो वहाँ आदमी फूल सकता था, लेकिन नहीं, अम्बरीश के अंदर वो गुण थे जो भक्त में होते हैं, वो फिर भी नहीं फूला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रभु कर रही है इस दास के लिए। तो क्या कहते हैं दुर्वासा, कहता है बक्सो प्राण दया करो, मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंड हो है शीतल की जगात। अम्बरीक मैं के तहां भी हंसे बदन खुलासे, अम्बरीश हंस के कहने लगा, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर, दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरणा रहूं, बक्सो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालदा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो।